चिश्ती संप्रदाय। पृष्ठ 34। भारत के संदर्भ में सूफियों का तीसरा महत्वपूर्ण संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय है। इस संप्रदाय की नींव हजरत अबू अहमद अब्दाल चिश्ती ने अफगानिस्तान के चिश्त नामक नगर में रखी थी। हजरत अब्दाल सीरिया के सुप्रसिद्ध सूफी संत हजरत अबू इसहाक शामी के शिष्य थे तथा उनके पिता चिश्त के सम्रांत व्यक्ति थे। अबू इसहाक सीरिया के रहने वाले थे। सच्चे गुरु की तलाश में वे बगदाद पहुंचे और ख्वाजा मुमशाद दिनूरी के शिष्य हो गए। ख्वाजा दिनूरी ने उन्हें साधना की पराकाष्ठा को पहुंचाकर आदेश दिया कि वे चिश्त में रहकर लोगों को सत्य मार्ग दिखाएं। अतः वे सन 843 ईस्वी में चिश्त चले गए। अबू इसहाक सन 940 में सीरिया लौट गए और चिश्त की अपनी दरगाह अपने प्रिय शिष्य ख्वाजा अबू अहमद को सौंप गए। हजरत अबू अहमद ने अपने गुरु की इस दरगाह को सूफी साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया और जीवन पर्यंत अध्यात्म साधना का प्रचार प्रसार करते रहे। उनके देहावसान के बाद उनके पुत्र अबू मोहम्मद इस दरगाह के खलीफा हुए। अबू मोहम्मद के बाद उनके भांजे ख्वाजा यूसुफ खलीफा बने, जिनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी ख्वाजा मौदूद चिश्ती अपने समय के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। ख्वाजा मौदूद के अनेक शिष्यों में से यद्यपि ख्वाजा रकनुद्दीन मोहम्मद संजानी और ख्वाजा हाजी शरीफ ने बड़ी ख्याति प्राप्त की, लेकिन ख्वाजा मौदूद की मृत्यु के बाद चिश्त के या खानकाह सूफी साधना का महत्वपूर्ण केंद्र बने न रह सकी। राजनीतिक उथल पुथल के कारण चिश्ती का क्षेत्र तुर्क कबीलों के युद्धों का मैदान बन गया। चिश्त की खानकाह के सूफी फकीरों ने रमते दरवेश बनकर चिश्त को सदा सदा के लिए त्याग दिया। गयासुद्दीन मोहम्मद का राज्य स्थापित होने पर यद्यपि चिश्त क्षेत्र में शांति स्थापित हो गई थी, लेकिन यह नगर पुनः सूफी गतिविधियों का केंद्र न बन सका। गयासुद्दीन मोहम्मद का बनाया हुआ मदरसा और भव्य मस्जिद भी चिश्त के सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्त में न रख सकी। वे भारत चले आए और अजमेर में रहने लगे। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवेश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगमन के साथ ही हुआ। ख्वाजा मोइनुद्दीन हजरत ख्वाजा मौदूद के शिष्य ख्वाजा उस्मान हरवानी के खलीफा थे। उनके पिता ख्वाजा गयासुद्दीन हसन धार्मिक वृत्ति के व्यक्ति थे। ख्वाजा अभी 15 वर्ष के ही थे कि उनके पिता का देहांत हो। पृष्ठ 35 गया। पिता के मृत्यु के बाद ख्वाजा सत्य की खोज में निकल पड़े। अनेक वर्षों तक समरकंद, बुखारा, हरवान, बगदाद, संजान, जिल, हमादान, तबरेज, खरकान, अस्त्राबाद, हेरात, चिश्त आदि स्थानों पर ख्वाजा ने तत्कालीन सूफी संतों का सत्संग लाभ प्राप्त किया और पृथ्वीराज चौहान के राज्यकाल में अजमेर आकर बस गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के दरोगा सैयद हुसैन मशहदी को उनके प्रति बड़ी श्रद्धा थी तथा उनके प्रोत्साहन से अनेक लोगों ने ख्वाजा की शरण में आकर इस्लाम स्वीकार कर लिया। ख्वाजा का संपूर्ण जीवन तप एवं त्याग से परिपूर्ण रहा और तथा उन्होंने किसी रूप में भी धन संपत्ति के संग्रह से स्वयं को निर्लिप्त रखा। उनके अनुसार दरवेशी के लिए 9 नियमों का पालन करना आवश्यक है। ये नियम है: 1. धन का संग्रह संचय न किया जाए। 2. किसी से उधार न लिया जाए। 3. भूखे होने पर भी किसी से याचना न की जाए। 4. जो कुछ अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त हो उसे शाम होते ही निर्धनों में बांट दिया जाए। 5. किसी के अहित की कामना न की जाए। शत्रु के लिए भी प्रभु से प्रार्थना की जाए। कि वह उसे सद्बुद्धि दे। 6. प्रत्येक सत्कर्म को गुरु प्रसाद समझा जाए, उसके श्रेय की इच्छा न की जाए। 7. प्रत्येक दुष्कर्म के लिए स्वयं को उत्तरदायी समझा जाए और भविष्य में स्वयं को ऐसे कर्म से दूर रखा जाए। 8. दिन उपवास में तथा रात्रि ध्यान में बिताई जाए। 9. मौन धारण किया जाए, बोला तभी जाए जब बोलना आवश्यक हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन के शिष्यों में से 2 सूफी संत बहुत प्रसिद्ध हुए, एक दिल्ली के खलीफा ख्वाजा बख्तियार काकी और दूसरे नागौर के शेख हमीदुद्दीन सूफी नागौरी। ख्वाजा बख्तियार काकी के पिता कमालुद्दीन अहमद मूसा ऊश के संभ्रांत व्यक्ति थे, लेकिन काकी अभी 18 महीने की ही थे कि उनके पिता परलोक सिधार गए। उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। हजरत काकी बचपन से ही ईश वंदना तथा ध्यान के लिए ललायित रहते थे। उनकी माता ने उन्हें सांसारिक बंधनों में बांधने की दृष्टि से उनका विवाह कर दिया, लेकिन पत्नी को साधना में बाधक बनते देख हजरत ने उन्हें तलाक दे दी। रिपीट, उनकी माता ने उन्हें सांसारिक बंधनों में बांधने की दृष्टि से उनका विवाह कर दिया, लेकिन पत्नी को साधना में बाधक बनते देख हजरत ने उन्हें तलाक दे दी। इन्हीं दिनों बगदाद की एक मस्जिद में उनकी भेंट हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती से हुई तथा उन्होंने अनुभव किया कि उन्हें सच्चा पथ प्रदर्शक प्राप्त हो गया है। जब हजरत मोइनुद्दीन बगदाद छोड़कर भारत आए तो हजरत काकी भी उनके साथ चले आए और मुल्तान में बस गए। सन 1221 के पृष्ठ 36 आसपास हजरत काकी दिल्ली आ गए। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने उनका बहुत स्वागत सत्कार किया। दिल्ली में हजरत काकी की लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि सुल्तान ने उन्हें शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा, लेकिन ख्वाजा ने अस्वीकार कर दिया। दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय का जितना प्रचार प्रसार हजरत बख्तियार काकी ने किया, उसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि सन 1236 ईस्वी में जब उन्होंने इस नश्वर शरीर का त्याग किया तब उनके श्रद्धालुओं की संख्या हजारों तक पहुंच चुकी थी। हजरत मोइनुद्दीन के दूसरे प्रिय शिष्य और खलीफा हजरत हमीदुद्दीन नागौरी थे। उनका तप त्याग इतना प्रभावी था कि उन्हें उनके गुरु सुल्तान उल तारकीन अर्थात त्यागराज कहा करते थे। उनके पास नागौर के निकटवर्ती गांव सुवाले में 1 बीघा जमीन थी जिसकी पैदावार ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन थी। नागौर के सुल्तान ने जब उन्हें जमीन तथा धन देने की पेशकश की तो उन्होंने यह कहकर उसे ठुकरा दिया कि मेरे गुजारे के लिए यही 1 बीघा जमीन काफी है। शेख नागौरी का कहना था कि शरीयत और तरीकत में आत्मा का शरीर के साथ गहरा संबंध होता है, इसलिए आचरण की शुद्धता आवश्यक है। वे उत्तम जीवन के लिए हजरत मोहम्मद के आचरण सुन्नत का अनुकरण करने की शिक्षा देते थे। नागौर तथा आसपास के क्षेत्रों में ख्वाजा की प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता अद्वितीय थी। 1274 ईस्वी में जब उनका देवासन हुआ तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनका मकबरा बनवाया। ख्वाजा के बाद भी शताब्दियों तक उनकी खानकाह चिश्ती सूफियों का महत्वपूर्ण केंद्र बनी रही। उधर दिल्ली में ख्वाजा बख्तियार काकी ने 9 पटु शिष्यों में से गजनी के शेख बदरुद्दीन उनकी दिल्ली स्थित खानकाह के खलीफा बने, लेकिन चिश्ती संप्रदाय के प्रचार प्रसार में उनके एक अन्य शिष्य शेख बाबा फरीद का योगदान अद्वितीय है। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंजी शंकर के पूर्वज 12वीं शताब्दी में काबुल से आकर भारत में बस गए थे। सन 1175 ईस्वी में शेख फरीद का जन्म मुल्तान के एक गांव कहतवाल में हुआ। उनकी माता अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। उन्होंने बालक फरीद के मन में ईश प्रेम की ऐसी ज्योति जलाई जिसका प्रकाश उत्तरोत्तर न केवल फरीद के जीवन को ही प्रकाशमान करता रहा, अपितु उसके प्रकाश से लाखों सांसारिकों को ईश्वरीय नूर की झलक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 18 वर्ष की आयु में शेख फरीद मुल्तान चले गए, जहां उनकी भेंट ख्वाजा बख्तियार काकी से हुई। इस भेंट में फरीद को सच्चा गुरु मिल गया तो वे आध्यात्म साधना में जुट गए। सन 1221 ईस्वी के आसपास जब ख्वाजा काकी दिल्ली गए तो फरीद उनके साथ दिल्ली आ गए। कई वर्ष गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करने के बाद वे हांसी चले गए। अब वे आध्यात्म साधना में पारंगत हो चुके थे। पृष्ठ 37। 12 वर्ष हांसी में रहकर वे अजोधन अर्थात पाक पत्तन चले गए और शेष जीवन उन्होंने अजोधन में ही बिताया। उनका देवासन सन 1265 ईस्वी में हुआ। शेख फरीद ने भारत में चिश्ती संप्रदाय को एक सुनिश्चित रूप प्रदान किया। उनके शिष्यों में हजरत जमाल हासवी, हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत अली अहमद साबिर, शेख बद्रुद्दीन इसहाक और शेख आरिफ बहुत प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं। इन संतों द्वारा प्रचारित प्रसारित चिश्ती संप्रदाय को भारतीय जनसाधारण से ऐसी स्वीकृति प्राप्त हुई कि आगे चलकर हजरत निजामुद्दीन से निजामी और हजरत अली अहमद साबिर से साबरी शाखे फूटी, जो अल्पकाल में ही छतनार वृक्षों का रूप धारण करके अपने अपने क्षेत्र में ईश विरह से वेवल आत्माओं को आध्यात्मिक शीतलता प्रदान करने लगी। भारत में फैलने वाले सूफी संप्रदायों में यही एक ऐसा संप्रदाय है जिसके केंद्र भारत के सभी प्रदेशों में स्थापित हुए और हिंदुओं तथा मुसलमानों की भारी संख्या इन केंद्रों की ओर आकृष्ट हुई। हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही चौदहवीं सती के महान सूफी संत हुए हैं। उनके शिष्यों में सुप्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सम्मिलित हैं। हजरत निजामुद्दीन तथा उनके समकालीन चिश्ती सूफियों ने भक्ति के श्रवण कीर्तन अर्थात समा रूप को लोकप्रिय बनाया, जिसके फलस्वरूप संगीत एवं साहित्य को भी बहुमूल्य रत्न प्राप्त हुए। समाप्त।